నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. तो आप सबको हार्दिक बधाई श्री रुक्मिणी महारानी के दर्शन के लिए. थोड़ा सा आवाज़ कम कर दो. हरे कृष्णा. तो रुक्मिणी देवी ये भीष्मक राजा की कन्या है और उनके चार भाई थे. सबसे बड़े भाई का नाम रुक्मी था, पिताजी का नाम भीष्मक था. ये भीष्मक राजा का थोड़ा सा इतिहास बनाना जरूरी है. ये सब महान लोग हैं. जब राधा रानी और चंद्रावली ये दो गोपियों का जन्म हुआ था, सबसे पहले वो विंध्याचल विंध्य पर्वत के पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ था. क्योंकि हिमालय को पार्वती देवी, थोड़ा आवाज़ कम कर दो, हिमालय को पार्वती देवी का पुत्री के रूप में प्राप्ति हुई थी, तो विंध्याचल को भी लगा कि मुझे भी ऐसी पुत्री होना चाहिए. तो विंध्याचल को तपस्या के बाद में दो पुत्रियाँ हुई जिनका नाम है राधा रानी और चंद्रावली. कंस ने तुरंत आदेश दे दिया उन दो लड़कियों का अपहरण करो, क्योंकि राधा रानी को वरदान था ऐसे कि राधा रानी का जो पति बनेगा वो हिमालय की पुत्री का जो पति है उसका भी पराभव करेगा. क्योंकि हिमालय की पुत्री पार्वती जिसका विवाह महादेव से हुआ, ब्रह्मा जी उनका पूजन करते हैं, ब्रह्मा देव भी उनको पूजते हैं. तो विंध्याचल ने ऐसा वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि मुझे ऐसी कन्या होनी चाहिए जिसका पति हिमालय की पुत्री के पति को भी परास्त करेगा, यानी कि महादेव को परास्त करेगा. तो जैसे ही जन्म हुआ तो कंस को खबर मिली कि ऐसी एक कन्या हुई है विंध्याचल को जिसके पति महादेव को भी परास्त कर सकते हैं. तो अगर मैं उसका पति बन गया तो मैं महादेव को परास्त कर सकता हूँ. इसलिए उन्होंने पुतना को आदेश दिया कि जाओ उसका अपहरण करो. तो पुतना आई और उन्होंने अपने माया जाल से इन दोनों कन्याओं को उठाया. दोनों कन्याओं को उठाया, उठाकर वो आकाश मार्ग में चले गई. जब आकाश मार्ग में चली गई तो विंध्याचल बहुत परेशान हो गए. उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया कि जल्दी आ जाओ, वो देखो मेरी कन्याओं को लेके उड़ रहे हैं, यज्ञ करो, मंत्र बोलो और जला दो उसको वहाँ पे. तो वहाँ पर तो ब्राह्मण, वहाँ के उस समय के ब्राह्मण इतने पावरफुल थे, मंत्र बोलकर चीज़ करते थे. वो मंत्र युग कहते हैं उसको, मंत्र युग, मंत्रों से सब कार्य होता था. उसके बाद यंत्र युग आया, उसके बाद तंत्र युग आया, फिर मंत्र युग आया, फिर यंत्र युग आया. पहले मंत्र, फिर तंत्र, फिर यंत्र. अभी यंत्र मतलब मोबाइल, सब मशीन. तो ब्राह्मण लोग यज्ञ करने बैठ गए तुरंत. तो ऐसे मंत्र बोले कि उड़ते हुए पुतना के शरीर में अग्नि निर्माण हुआ और वो जलने लगी, ऐसे तपने लगी. इतनी जलने लगी कि उसने एक कन्या को छोड़ दिया, वो पकड़ ही नहीं पाई उसको. तो वो कन्या जी चंद्रावली, और वो चंद्रावली कन्या जो थी, अरे सब लोग को विनती है कथा सुनते वक्त जप नहीं करना है. डोंट चैंट, चैंट वाइल यू चैंट एंड हियर वाइल यू हियर. जब सुनने का समय आता है केवल सुनो, जब जप का समय आता है तब जप करो. तो जो चंद्रावली थी उसको उसने छोड़ दिया और वो कहाँ गिरी, भीष्मक राजा के विदर्भ नगरी में गिरी. और भीष्मक राजा ने चंद्रावली का 5 साल तक लालन पालन किया है. उसके बाद में पूर्णमासी जी आई हैं वृंदावन से और चंद्रावली को लेकर गई है और चंद्रभानु महाराज को पुत्र के रूप में सौंप दिया है। फिर वो बड़ी हो गई और गोवर्धन मल्ल के साथ में उसका विवाह हुआ। एनीवे वो तो अलग बात है। और राधा रानी को लेकर फिर उड़ती रही उड़ती रही उड़ती रही। विंध्याचल किधर है? यस, ज्योग्राफी विद्यार्थी कितने लोग हैं यहाँ पर? विंध्य पर्वत कहाँ है? अरे महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में आए ना वो उसको उठाने के लिए, तो महाराष्ट्र से ही वो ईशान्य दिशा में जा रही थी। तो महाराष्ट्र के ईशान्य दिशा में क्या है? विदर्भ है, वहाँ पर वो छोड़ दिया उसको। तो वहाँ से गोकुल किधर है? कंस महाराज कहाँ बैठे हुए हैं? मथुरा में। तो वो और नॉर्थ में जाने लगी। तो नॉर्थ में जब भी मथुरा आने वाला था तो और उसके मंत्रों का प्रभाव से और जलने लगी वो। तो वो दूसरी कन्या जो थी राधा रानी वो कहाँ गिर गई? रावल में, गोकुल में जो रावल है जमुना किनारे वृषभानु महाराज के कुंड में गिर गई वो। तो वहाँ पर उसको सुंदर कमल में मतलब ले लिया गया, भगवान की ऐसी व्यवस्था है। वो गिरने वाले तो सुंदर कमल, स्वर्ण कमल प्रकट हो गया वहाँ पर, और वहाँ पर उसको गद्दी पर ले लिया गया जब गिर रही थी। और अगले दिन जब वृषभानु महाराज स्नान करने चले गए तो राधा रानी की प्राप्ति हुई। उसको हम क्या बोलते हैं? राधा अष्टमी, हरे कृष्णा। तो ये भीष्मक महाराज सीता का अपना रुक्मिणी का जन्म होने के पहले ये सेवा कर चुके थे। उसके बाद में उनको चार पुत्र हुए, ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी और सबसे छोटी कन्या रुक्मिणी। कल की कथा में रुक्मी का उल्लेख कहाँ पर आया था? कल की कथा में रुक्मी का उल्लेख आया था कि रुक्मी ने जो रेवतक राजा के जो वंशज थे उनको परास्त किया और भगा दिया यहाँ से। तब द्वारका उजड़ गई थी जिसको भगवान ने दोबारा बसाया। तो रुक्मी का उल्लेख वहाँ पर आया था। तो रुक्मी जो वो बहुत पावरफुल था, अपने पिता से भी पराक्रमी हो गया वो। उसकी दोस्ती थी शिशुपाल से। शिशुपाल ऐसा व्यक्ति है कि जैसे जन्म लिया ना उसने, सबसे पहला शब्द उच्चारण किया तो भगवान की निंदा में उच्चारण किया। सबसे फर्स्ट वर्ड जब उच्चारण किया तो भगवान की निंदा किया उसने। तो शिशुपाल की जो माँ है वो कुंती की एक बहन है, कुंती की कजिन सिस्टर है वो। तो जब उसका जन्म हुआ तो इसके तीन सर, दो हाथ और तीन पैर थे उसको, मतलब आपके दो पैर है उसके बीच में और एक पैर, आपका एक सर है तो उसके दो और दो सर एक्स्ट्रा कंधे पर, दो कंधे और तीन सर, ऐसा भयंकर रूप था उसका। तो बड़ी परेशानी हो गई माता जी को उनके। तो ऋषियों ने बताया कि इसके दो एक्स्ट्रा सर और एक एक्स्ट्रा पांव तब नष्ट हो जाएगा जब वो उसकी गोद में जाएगा जो उसका वध करेगा। समझ में कॉम्प्लिकेशन। तो भी क्या करें, अभी तीन सर भी नहीं चाहिए लेकिन वध करने वाला भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अपने छोटे से बालक को, देखो छोटा सा बालक है, नन्ना सा बालक, इतना होगा शायद, इधर तीन सर है इधर तीन पैर है, इतना सा बालक सब लोग गोद में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इनकी गोद में दिया उनकी गोद में दिया उनकी गोद में दिया इनकी गोद में दिया, कुछ नहीं हुआ। आखिर में कृष्ण की गोद में दिया, जैसे ही कृष्ण की गोद में दिया दो सर और तीसरा पांव नष्ट हो गया। लेकिन खुशी तो बहुत हुई लेकिन दुख भी हुआ कि अरे एक भाई कृष्ण है हमारा, कजिन ब्रदर, उसके द्वारा मृत्यु भी होने वाली है। तो शिशुपाल की माता ने कृष्ण से बहुत विनती किया कि भैया इसको माफ़ कर दो, कुछ उत्साह दे दो, कुछ कंसेशन दे दो। उन्होंने कहा मैया, मतलब बुआ थी ना उनकी, वो बुआ थी, बुआ पिताजी की शायद बहन थी वो, बुआ जी को बोला बहुत चिंता मत करना, एक समय पर वो मेरे 100 अपराध करेगा ना तो मैं माफ़ कर दूंगा उसको। तो ये मत समझना कि शिशुपाल ने 2001 में एक अपराध किया था, 3 में 50 किए थे तो 51 हो गए, ऐसा गिनती नहीं हुआ था। एक समय पर लगातार 100 अपराध करेगा ना तो मैं माफ़ कर दूंगा उसको, लेकिन 101वां किया ना फिर मार दूंगा उसको। बोला कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी मेरे बालक को, 99 करके आउट हो जाना लेकिन 100 मत पूरा करना। इस तरह से कहने का तात्पर्य क्या है, जोक्स भूल जाओ। शिशुपाल इतना अपराधी था भगवान का, इतना द्वेषी था, दिन रात स्वप्न में विचार में चेतना में रोम रोम में उसके भगवान के प्रति घृणा थी उसके मंदिर मन में, जहां जाए वहां भगवान की दुश्मनी द्वेष और क्या कहते हैं उसको कॉम्पिटिटिव नेचर। तो ये शिशुपाल से रुक्मी को अपनी सुंदर रुक्मिणी बहन का विवाह करने का विचार था। अभी रुक्मिणी जो थी वो इतनी सुंदर थी, 13 साल की उम्र थी उसकी जब वो युवावस्था में आई, इतना सौंदर्य उसका वर्णन भागवत में दिया है कि देवता लोकों से उसका दर्शन करने के लिए खाली आते थे, कामवश यानी लस्टी डिजायर्स था। एक सुंदर स्त्री को लड़की, जैसे हमारे क्या कहूँ आपको, जब नए नए भक्त बने थे सब लोग कॉलेज में विद्यार्थी थे, तभी केवल विदेशी युवतियों को देखने के लिए मंदिर में आया करते थे कि भाई हरे कृष्णा मंदिर में बहुत विदेशी युवतियाँ रहती हैं, तो वो सब कॉलेज के विद्यार्थी शाम को दर्शन करने के लिए आते थे और समोसा खाने के लिए जुहू मंदिर आते थे। तो ये तो बॉम्बे से आ रहे हैं, ग्रैंड रोड मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, जुहू में जा रहे हैं, लेकिन देवता लोक से रुक्मिणी का सौंदर्य देखने के लिए देवता लोग आते थे, अपने अपने वाहन में हवाई जहाज में बैठ के आते थे। और कहते थे, ऐसा वर्णन आता है कि कुछ लोग बेहोश भी होते थे उसको देखकर, इतना सौंदर्य था उनका, उसको देखकर काम वासना इतनी जगती थी कि काश ये मेरी हो जाए, ऐसा देखकर वो अपने विमान में बेहोश होते थे, इतना सौंदर्य वर्णन किया उसका, इतना अति सुंदर थी वो। लेकिन बाहरी सौंदर्य से कुछ नहीं होता है, बाहरी सुंदरता जो होती है ना वो समय के साथ नष्ट हो जाती है। इसलिए जब हम सुंदर होते हैं या जवान होते हैं तो हमारा मन यहाँ वहाँ भागता है, कोई हमको देखता है और इशारे करता है तो हमको भी मोह होता है उसका, हाँ, और हम फिर उसके चक्र में फंस जाते हैं। ये केवल अगर आप सूक्ष्म रूप में घुस जाएंगे ना मेडिकल, तो केवल कुछ हॉर्मोन्स का परिणाम ही है। कुछ हॉर्मोन्स उस समय शरीर में घूमते रहते हैं, उस समय ऐसा कहते हैं षोड़श वर्षे गर्दभी, 16 साल के उम्र में एक गधी होती है ना गधी, वो भी बहुत सुंदर दिखती है और गधे का दिल चुरा लेती है वो कितनी भी कुरूप लड़की होगी जब वो 16 साल की होती है तो बहुत सुंदर दिखती है, और उस समय बहुत गड़बड़ हो जाता है। हाँ, ये काम वासना ऐसी है कि वो भलो भलों को परास्त कर देती है। तो ऐसे देवता स्वर्ग के, पृथ्वी के अनेक राजा राजकुमार सब रुक्मिणी के नाम से पागल थे, और उसमें रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल करने का तय कर दिया। अब एक विशेष बात है समझने की इसमें, जो हमारे भक्ति मार्ग में बहुत ही आवश्यक है हमको समझना, वो ये है कि रुक्मिणी थी विदर्भ में और भगवान कहाँ थे, मथुरा में जन्म हुआ, फिर गोकुल में आए और गोकुल से फिर नंदगांव गए ना, तो 10 साल 11 साल 52 दिवस तो वो उधर रहे, वो ब्रज में रहे, उसके बाद मथुरा चले गए है ना, उसके बाद में फिर द्वारका चले गए, तो बहुत दूर है वहाँ से वो। लेकिन नारद मुनि एक ऐसे व्यक्ति है वो सब जगह सब टाइम रहते हैं, कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं आपको, हाँ सावधान रहना यहाँ पर भी मिलेंगे, आशीर्वाद लेना उनसे, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के गुरु हैं वो, वाल्मीकि मुनि, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसे बड़े बड़े हस्तियाँ जो है ना, द वर्ल्ड्स बेस्ट चैंपियंस इन भक्ति, सबके गुरु नारद मुनि हैं। वो सत्ययुग बोलो, त्रेतायुग बोलो, द्वापर बोलो, सब युग में नारद मुनि जी अपने गुरु जी सब जगह बैठे हुए। इसलिए पहला हमने उनको अर्पण किया, श्री नारदाय नमः, हमारे यज्ञ में। तो नारद मुनि जी ये बाल्य अवस्था में भगवान की लीलाओं को बताने के लिए सब जगह घूमते थे। हाँ, साधुओं का काम क्या रहता है, साधु लोग सब जगह जाते हैं, स्वार्थ के लिए जाते नहीं है, वो सब जगह जाते हैं कृपा देने के लिए, वो आपकी रोटी खाने के लिए नहीं आते, रोटी तो आपको देने की जरूरत है उनको, इसलिए वो लेते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है आपकी रोटी की, वो केवल हम जैसे बद्ध जीवों को माया से बचाने के लिए आते हैं। जो सो रहे हैं वो जग जाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुर्सी का इतना सहारा लेंगे तो क्या होगा, मैंने सुबह बताया था आपको, इसलिए सीधे बैठ जाइए, आराम से कुर्सी में बैठिए लेकिन सीधे स्ट्रेट बैठिए। तो नारद मुनि जी बचपन में आ आकर रिपीटेडली रेगुलरली भगवान के विषय में उधर आके कथा करते थे और रुक्मिणी जी बड़े चाव से उसको सुनती थी और अभी तक दर्शन नहीं किया भगवान का, लेकिन बचपन से ही केवल श्रवण मात्र से भगवान के लिए उसके मन में आकर्षण पैदा हो गया और उसने तभी वन में वर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी। श्रवण शक्ति जो है ना, श्रवण साधना, श्रवण मार्ग जो है, उसकी महिमा यहाँ पर दिखती है हमको। एक व्यक्ति, आप सब लोग, हम सब लोग भगवान को भी दर्शन नहीं किया अभी तक, सब मंदिर में भगवान का विग्रह देखते हैं लेकिन चलते फिरते भगवान का दर्शन नहीं किया हम लोग ने, लेकिन उनके बारे में श्रवण करके, साधुओं के मुख से जो भगवान पर प्रेम करते हैं उनके मुख से जब भगवान के विषय में वर्णन सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी, जो पत्थर दिल हृदय हमारा, उसमें से भी भगवान के लिए आकर्षण के नए नए पत्ते, फूल निर्माण हो जाते और हमारे हृदय को एक श्रेष्ठ हृदय बना देते हैं। जिस हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण और प्रेम पनप रहा है वो सबसे श्रेष्ठ हृदय है। जीवत शव समान, अगर वो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, तो वो शव समान है, मृत्यु प्राप्त किया हुआ जो शव है, मुर्दा, उसके समान है। और हम सब लोगों को इस मुर्दा अवस्था से जागृत होना है, क्या करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, जैसे ही कृष्ण राम का उच्चारण करते हैं हम लोग, तब जीवित हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं, हाँ, जीवंत कहलाने के योग्य बन जाते हैं। और फिर भगवान का ध्यान हमारी ओर आता है जब हम उस जीवंत शरीर में भगवान के प्रति उनके नाम के माध्यम से आकर्षण उत्पन्न करते हैं। तो नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त, पवित्र भक्त, प्रेमी भक्त, तो भगवान के प्रेम में हमेशा डूबे रहते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, हमेशा राधिका रमण का नाम उच्चारण करते हुए, उन्होंने ही पंचरात्रि विधि का ग्रंथ लिखा है। राधा रानी के आदेश पर उन्होंने वो नारद कुंड में कुसुम सरोवर के सामने रहकर भगवान के अर्च विग्रहों की कैसी पूजा की जाती है उसका सागर संगीत वर्णन उस ग्रंथ में किया है, जिसका हम आज हमारे इस्कॉन के मंदिर में भगवान के विग्रहों की पूजा करने के लिए पालन करते हैं। तो वो राम नारद मुनि के और अन्य अनेक संतों की कृपा से रुक्मिणी के मन में बचपन से ही कृष्ण के प्रति प्रेम का अंकुर फूटा हुआ था। जब वो जवान हो जाती है, उपवर हो जाती है, तो उसको खबर मिलती है कि अपने पिता के इच्छा के खिलाफ उनका बड़ा भाई उनका विवाह शिशुपाल से करने जा रहा है, जो भगवान का दुश्मन है, जिससे वो प्रेम करती है। क्या करे, भीष्मक की तो पहले से इच्छा थी कि मेरे इतने सुंदर कन्या के लिए कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ वर हैं, लेकिन अपने बलवान पुत्र की इच्छा के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सब कुछ हो जाता है, तय तारीख तय हो जाती है, पूरा प्लानिंग हो जाता है, सब लोगों को निमंत्रण जाता है, हाँ, और बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते हैं, जरासंध और दमघोष शिशुपाल के पिताजी, हाँ, लेकिन उनके मन में एक शंका रहती है कि शायद अगर कृष्ण बलराम वहाँ पर आ जाए तो गड़बड़ हो सकती है, युद्ध भी हो सकता है। तो अपनी सारी सेनाओं को लेकर भी वो आ रहे थे, लोगों को लग रहा था कि अरे शादी है कि युद्ध का समय है, युद्ध के लिए जा रहे कि शादी के लिए जा रहे हैं, बोले हो सके तो शादी, नहीं तो युद्ध, दोनों के लिए तैयारी हमारी। तो कई अक्षौहिणी सैन्यों को लेकर कई राजाएं पहुंच गए वहां पर। अरे उन दिनों में शादी का इंतजाम कैसे होता था, हाँ, कई शहर शादी का मंडप हुआ करता था, कई शहर। अभी देखो आप जो 10 लाख की सेना लेकर हमारे श्याम कुंड जी आ गए, तो श्याम कुंड जी को तो घर देंगे ही, नया बनाया हुआ, शादी के लिए स्पेशल बनाया हुआ, आपके नाम से बनाया हुआ। आपकी सेना के लिए फिर एक मैदान दिया जाएगा, तंबू के साथ, खाने पीने की व्यवस्था अलग। ऐसे कई राजा आए तो कई महल बने थे ऐसे नाम से, ये दमघोष के लिए, जरासंध के लिए, उसके लिए, ये शाल्व के लिए, अलग अलग महारथी थे वो सब, सब पूरे हाथी घोड़े, तो हर एक तंबू में हाथी का एक तबेला, एक घोड़े का तबेला, एक गाय बैल का दूध के लिए, एक रसोई खाना, फिर महल रहने के लिए, नौकर चाकर सबकी सेवा के लिए, क्या बड़ा इंतजाम हुआ करता था। हम लोग अभी यकीन नहीं कर सकते ये सब होना, हाँ। दमघोष भी आ गए, शिशुपाल के पिताजी दूल्हे को लेकर आ गए। और इधर क्या हुआ, इधर भगवान कृष्ण के मथुरा नगरी में अभी काल यवन और जरासंध का आक्रमण होने वाला था, तो भगवान ने रातों रात, मैंने बताया ना आपको, सबको शिफ्ट कर दिया द्वारका नगरी में। और द्वारका नगरी में मैंने आपको बताया कालयावन का कहानी बताया सुबह आज, मुचकुंद वाली कहानी। कालयावन के बहाने भगवान ने मुचकुंद का उद्धार किया और कालयावन का वध कर दिया। उसके बाद जरासंध आया 18वीं बार। 17वीं बार परास्त होने के बाद भी लोगों ने उसको बहुत सारा काउंसलिंग किया था, डोंट वरी अगली बार जीत जाओगे, जाओ मेहनत करते रहो, लगे रहो, लगे रहो जरासंध भाई, लगे रहो, एक ना एक दिन विजय मिलेगी आपको। इस आशा से लगे रहे, हर बार 24-24 अक्षौणी सैन्य को लेकर आए और सब मुर्दा हो गए। 18वीं बार फिर उत्साह के साथ में आया और द्वारका के नगरी में आक्रमण किया। श्री कृष्ण बलराम दोनों बाहर निकले, वैसे ही बाहर निकले, हाँ, और पैदल चल रहे और सामने से आ रहा है, सावधान, तैयार रहो मृत्यु के लिए, मेरे बाणों का सामना करने के लिए तैयार रहो। अपने चल रहे जैसे समुद्र में घूम रहे हैं द्वारका के, चल रहे चल रहे चल रहे, उनके सामने आ गए और सामने से बिना देखे चले गए। वो चलते गए चलते गए चलते गए और ये उल्टा घुमा, पर ये ग्वाला खाली गाय का दूध निकालना पता है, गोबर में लिपना पता है, गोबर साफ करना पता है, कंडे बनाने की कला जानते हो, ये युद्ध है युद्ध, मैं जरासंध आपको ललकारता हूं। अरे 17 बार हार चुका ना, वो भूल गया क्या तू? लेकिन बोल रहा है अपना, क्योंकि उसको बहुत उसका उत्साह बढ़ रहा था कि 17 बार जिससे हार चुका हूं, 18वीं बार वो पीठ दिखाकर जा रहा है, जितने का अच्छा मौका है। वो जिन्होंने काउंसलिंग किया था वो सही बोल रहे थे, अभी जितने का मौका है। भगवान चले गए चले गए चले गए, इसके पीछे रथ लेके भाग रहा है वो, हाँ, और भगवान चले गए चले गए चले गए, एक पहाड़ पर चढ़ गए, पहाड़ पर चढ़ गए तो गायब हो गए एकदम। राजा ने बहुत ढूंढा किधर मिले नहीं, तो बोला चारों तरफ लकड़ी लगा दो, आग लगा दो, पहाड़ को जला दो, जलकर भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। चारों तरफ लकड़ी डाली, आग लगाया, बहुत भयंकर ज्वालाएं आई, अभी इसमें से बचना मुश्किल है, ठीक है मर जाएंगे, ऐसे करके वापस चला गया वो। कृष्ण बलराम ऊपर ऊपर गए, उन्होंने 140 किलोमीटर दूर छलांग लगाई। कितनी? 140 किलोमीटर पहाड़ के चोटी से द्वारका की ओर छलांग लगाई उन्होंने, द लॉन्गेस्ट हाई जंप यू कैन एवर इमेजिन। सीधे द्वारका नगरी में आए। अभी आप बोलेंगे 17 बार जिसको ऐसा आराम से हराया, हाँ, जैसे हमारा होता है ना क्रिकेट का मैच होता है ना, जब कोई ब्लैंडर टीम आती है तो लगातार एक वन इनिंग्स के फिनिश कर देते हैं, उनकी तरफ सेंचुरी मारते, हमारी तरफ से 0-0-0 हो जाते, वैसे चैंपियन थे कृष्ण भगवान। लेकिन क्यों पीठ दिखाकर जरासंध के लिए भाग गए वो? क्योंकि उस समय रुक्मिणी का विवाह होने वाला था शिशुपाल से, और रुक्मिणी बड़ी परेशान थी, वो घटिका गिन रही थी, अभी क्या करूं मैं, कैसे करूं, मुझे इसे विवाह नहीं करना है, मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन अभी भी मौका है, अभी भी समय है, अभी मुहूर्त नहीं आया, अभी 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, तो वो एक योजना बनाती है। देखो अल्टीमेटली क्या है ना, है वो कन्या लेकिन बेसिकली क्षत्रिय की कन्या है वो, इज अ फाइटर बाय नेचर, हाँ, वैसे ऐसे हार नहीं मानते क्षत्रिय की कन्या, बहुत कोशिश करते हैं। ये जो क्षत्रिय की कन्या होती ना, जैसे सत्यभामा फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण के साथ में युद्ध में जाती थी वो, रथ में बैठकर युद्ध देखती थी वो, इमेजिन हाउ पावरफुल द लेडीज वर। जैसे दशरथ की पत्नी थी कैकेयी, ये सारथी करती थी वो दशरथ के लिए, एक बार दशरथ बेहोश हो गए तो वो इतनी कुशलता से रथ को घुमाकर तंबू में ले गई, उसको नर्सिंग किया उन्होंने, परिचर्या की उनकी, होश में लाया उनको और दोबारा ले गई युद्ध में, इतनी वीर होती थी ये कन्याएं, क्षत्रणी कन्याएं। लेकिन बड़े कल्चर भी हुआ करते, ऐसे नहीं कि भाई से झगड़ा कर रही है, मुझे नहीं करना शादी इसके साथ में, तू जो गाय कर ले, मैं तो भाग जाऊंगा घर से, ऐसे नहीं थे वो, वेरी कल्चर्ड आर्य कन्याएं थी वो, क्षत्रिय होने पर भी पिता के आज्ञा के बाहर नहीं, बड़े भाई के आज्ञा के भी बाहर नहीं, लेकिन मन में तो कृष्ण के प्रति प्रेम है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो एक अपने विश्वास के ब्राह्मण को बुलाया उसने और उसको एक खत दिया, जो खत आप सबके हाथ में है ना, है कि नहीं है, बहुत लोगों ने लिया वहां से, लाल रंग में छपा हुआ वो रुक्मिणी का लव लेटर है जो उसने भगवान के लिए लिखा था। उसका सारांश ऐसा है कि मैंने मेरे दिल को आपको दे दिया है, ये मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, ऐसे कोई राजकन्या को जो सुशिक्षित सुसंस्कृत घर से हैं, आर्य घर से हैं, उनको नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं बेशरम होकर आपको एक खत लिख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी मैं बेशरम नहीं बनती हूँ तो मेरे को आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो भले मैं अभी शर्म छोड़कर आपसे ये कहूँ जो मेरे दिल में है, ये एक धाड़स दिखा रही है वो अपने पत्र में, हाँ, एक अपने एक मर्यादा को तोड़कर अपने हृदय की बात भगवान को बता रही है। फिर नम्रता दिखाती है, फिर कहती है कि देखो मैंने तो आपको वर लिया है बचपन से, बचपन से मैंने आपके बारे में सुन सुनकर आपके प्रति प्रेम मेरे मन में हो गया है, और मेरे पति आप ही हैं और कोई नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे तरफ से प्रेम है, पता नहीं आपको मुझ पर प्रेम है कि नहीं, आई डोंट नो, और पता नहीं मैं आपके योग्य भी हूँ कि नहीं, मैं तो आपके दासी बनने के लायक भी नहीं हूँ, मैं तो ये खत लिख रही हूँ आपकी दासी बनने के लिए, ओनली टू बिकम योर सर्वेंट, क्या आप मुझे सेविका के रूप में जीवन भर के लिए स्वीकार करने को तैयार हो गया? मैं तो बता रही हूँ मुझे जो कहना है, लेकिन अगर आपके लिए मैं योग्य नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ आपके सामने, आप तो भगवान हो, आप तो द्वारकाधीश हो, आप तो देवकी पुत्र हो, नंद पुत्र हो, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल सोच रही हूँ कि मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ, मैं चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं आपके मन में क्या है, लेकिन मैं विनती तो कर रही हूँ, आपके चरणों में निवेदन कर रही हूँ कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो एक साथ धाड़स भी है, एक साथ में थोड़ा सा मर्यादा छोड़कर भी बात कर रही है, एक साथ नम्रता भी दिखा रही है, एक ही साथ में दृढ़ निश्चय भी दिखा रही है। एंड में क्या लिखती है मालूम है? अगर आपने मुझे आपकी इच्छा के अनुसार, तो मैं तो ज़बरदस्ती करने वाली नहीं हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार आपने अगर तय कर लिया कि नहीं करना है विवाह मुझसे, तो मैं मर जाऊंगी और अनंत जन्मों तक तपस्या करूंगी और तपस्या करके आपके पत्नी होने के योग्य बनूंगी, और तब आप मुझसे विवाह करना। आपसे दृढ़ निश्चय भी है उसका भगवान को प्राप्त करने का। एक भक्त के हृदय में भगवान को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हम में से कोई भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन प्रयास करना हमारा काम है। जब हम भगवान को प्राप्त करते हैं या भगवान किसी को प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उसको योग्य हो जाता है, भगवान उसका प्रयास देखकर उसको अपनाना निर्णय लेते हैं कि मैं इसको अपना लूंगा। अपनी साधना से हम लोग भगवान को पाने के योग्य नहीं बनते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अपनी तपस्या से हम भगवान को पाने के योग्य नहीं बनते। कोई भी अपने तपस्या से साधना से भगवान को खरीद नहीं सकता है, लेकिन एक चीज से भगवान को खरीद सकते हैं, वो क्या है? प्रेम। रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्ति और प्रेम ऐसी वस्तु है जो भगवान को खरीद लेती है। भगवान को खरीद लेने के बाद तो आगे की है, भगवान खुद को बेच देते हैं उस व्यक्ति को। भगवान के भक्त सोचते नहीं कि मैं भगवान को खरीद लूंगा, मैं इन पर ऐसा प्रेम करूंगा कि मैं इनको खरीद लूंगा, ऐसे भक्त नहीं सोचते। लेकिन जो प्रेम करता है उसको देखकर भगवान सोचते हैं कि मैं इन्हें अपने आप को बेच दूंगा। क्योंकि तो भक्ति कैसी है? श्री कृष्ण आकर्षणी, ये उसका छठवां गुण है भक्ति का, श्री कृष्ण आकर्षणी। साक्षात श्री कृष्ण को भी वो आकर्षित कर लेती है जो किसी से भी आकर्षित नहीं होते हैं, ना धन से होते हैं, ना विद्या से होते हैं, ना बल से होते हैं, ना ऐश्वर्य से होते हैं, ना कला से होते हैं, ना सिद्धि से होते हैं। जिस चीज पर हम सब लोग गर्व करते हैं, किस पर गर्व करते हैं सबसे पहला बताइए? पैसे पर सब लोग गर्व करते हैं, कलयुग का एक लक्षण है, सब लोग पैसे को बड़ा मानते हैं। पैसा कमाना आता है तो आप बहुत बड़े आदमी हो, पैसा कमाना नहीं आता है यूजलेस हो। सबसे बड़ा उद्धव जी को भगवान बता रहे हैं 11th स्कंद में भागवत के, कि पैसा ही व्यक्ति की योग्यता का और अयोग्यता का निर्णय करने के लिए समर्थ होगा। उसके बाद में हम विद्या पर गर्व करते हैं, अरे मैं MD MS PhD हूँ, कोई बोलेगा मैं प्रधानमंत्री हूँ, कोई बोलेगा मैं मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, प्रभाव, फिर कोई बोलेगा मैं बहुत सुंदर हूँ, मिस्टर वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड हूँ। सुंदरता पर गर्व करते हैं, विद्या पर गर्व करते हैं, अधिकार पर गर्व करते हैं, हाँ बल पर गर्व करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं? वैराग्य पर बर करते हैं कि मैं इतना वैराग्य हूँ कि अब दूध पी के जीता हूँ, जमीन पर सोता हूँ, ठंडे पानी से स्नान करता हूँ, नमक मिर्च नहीं खाता, केवल बिना नमक मिर्च के खाना खाता हूँ, ऐसे गर्व होता है वैराग्य का। लेकिन वैराग्य, सुंदरता, बल, कोई भी चीज़ भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती है। क्यों? कारण क्या है उसका बताओ? इन सारी चीज़ों पर हमारे पास होने पर भी भगवान उससे प्रभावित नहीं क्यों होते बताओ? हाँ, यस, अरे ये सब चीजें भगवान की दी हुई है बाबा, वो मैंने आपको दी है, वो मुझको दिखाकर आप इंप्रेस कर रहे हो, क्या फायदा है उसका? जो चीज भगवान ने आपको दी है उसको भगवान पर दिखा के उसको ही इंप्रेस करेंगे क्या आप? भगवान हंसेंगे ना आपको, अरे मैंने दिया आपको ये सब चीज, मुझे दिखाकर इंप्रेस क्यों कर रहे हो? जो मेरा दिया हुआ नहीं है, जो आपका खुद का है, उससे भगवान प्रभावित हो सकते हैं। और वो एक ही चीज है आपका, आपका प्रेम और भक्ति, वो आपका ओरिजिनल है, वो दिया हुआ नहीं भगवान का। इसलिए भक्ति करो भगवान की। हाँ, तपस्या करके भगवान को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। एक था ना दूध वाला ब्रह्मचारी, उसको भगवान ने निकाल दिया कीर्तन से। भगवान ने कहा अगर केवल दूध पी के रहकर ये तपस्या करके वो समझता है कि मुझे जीत सकता है तो वो भ्रम में है, निकाल दो उसको यहां से। ऐसा बालों को पकड़ के उसको निकाला गया और उसके बाद आंगन से बाहर कर दिया उसको। फिर भी दंडवत प्रणाम किया उसने। श्रीवास पंडित ने क्या कहा, भगवान ये बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी है, ये केवल दूध पीता है। बोला अच्छा केवल दूध पीकर मुझे इंप्रेस करना चाहता है क्या? वो नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। एक है शरणागति और दूसरी है प्रेम भक्ति, इसी से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये प्रेम से भगवान प्रभावित होते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि रुक्मिणी जी ये खत लिखकर ब्राह्मण को भेज देती है। इतनी एंग्जाइटी थी उसके अंदर, इतनी चिंता थी, इतनी उत्सुकता थी, क्या होगा, क्या पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पाने के बाद क्या होगा, भगवान पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ बोलेंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे, कितना चीज है उसके अंदर। और लास्ट में ना उनका एक जैसे होता ना एक मेटिकुलस मैनेजर, हाँ आपको पता है कि होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन फिर प्लानिंग करके रखता हूँ, हाँ इम्पॉसिबल है, लेकिन हो गया तो मेरी तैयारी कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पूरा प्लानिंग लिख देती है, बोले एनीवेज अगर आप तय करते हो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने का तय कर लेते हो तो आपको प्रश्न आएगा कि मैं कैसे उठा आने आऊँ आपको उठाने के लिए। ये तो भीष्मक, तो भीष्मक पिताजी को दिल दुखा के और किसी को दिल दिखा के मुझे महल में घुस के चुरा के लेना तो आपके मर्यादा के बाहर होगा। डोंट वरी, हमारे विदर्भ में ऐसी रिवाज होती है कि नई नई दुल्हन को शादी के पहले एक दिन अंबिका देवी के मंदिर में लेके जाते हैं, वहाँ पर अंबिका देवी की पूजा होती है, वहाँ पर मैं खुलेआम रहूँगी, तो किसी को डिस्टर्ब किए बिना आप मुझे उठाकर ले जा सकते हो, यहाँ तक की प्लानिंग करती हो। हाँ ऐसा होना चाहिए भक्त को, भले भगवान ने हमको ना कर दिया तो चलेगा, लेकिन भगवान अगर हाँ बोलेंगे तो क्या क्या करना है सब लिख के रखो, हाँ सबमिट करो उनके पास कि मैं उधर मुंबई में रहता हूँ मेरा घर इधर इधर है, कभी मर भी गया तो आप आ जाना लेने के लिए, मैं उधर ही रहता हूँ, मैं आपकी अभिलाषा रखता हूँ मन में कि आप आएंगे और मुझे ले जाएंगे, मैं योग्य नहीं हूँ आपके, लेकिन अगर आपको लगा कभी ऐसे एक मौके पे तो मैं इधर हूँ, मेरे को लेके जाना, ऐसा प्लानिंग में करके लेटर एंड करती हो। वो ब्राह्मण जो है वो देखो आप विदर्भ किधर, द्वारका किधर, वो तो विदर्भ ईशान दिशा में महाराष्ट्र के, द्वारका तो गुजरात में वेस्ट में, कई दिन यात्रा करके पहुंच जाता है वो। वो ब्राह्मण को भगवान स्वागत करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, चरण धोते हैं, उनके आसन पे बिठाते हैं, क्षेम कुशल पूछते हैं, ब्राह्मण विश्राम करता है, फिर बोलते हैं कैसे आना हुआ, तो वो लेटर निकाल के देते हैं उनको, बोलते बहुत गुप्त लेटर है ये, क्योंकि लेटर का परिणाम क्या होगा मालूम नहीं, इसलिए गुप्त रखना उसको। भगवान पढ़ते हैं और उसके बाद में जरासंध का आक्रमण होता है, सॉरी जरासंध के आक्रमण के बाद में ये होता है। तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, वो जानते हैं मेरा भक्त वहां पर रो रहा है, मुझे पुकार रहा है, तभी युद्ध में फंस गया तो वो शादी हो जाएगी उधर, मुहूर्त निकल जाएगा, बाद में जाके क्या करूंगा मैं, किसी और की पत्नी हो जाएगी वो। समय का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हाँ समय पर योग्य, समय पर योग्य बात करनी चाहिए कभी भी। भगवान बोलते हैं कि मैं वो जरासंध को पहले मारता हूँ फिर देखता हूँ उसके बाद में, तब तक तो विवाह हो जाता, सब पता था भगवान को, इसलिए भगवान ने ये फालतू टाइम पास करना छोड़ दिया। अभी आप जो सोचिए एक बात, जो व्यक्ति 17 बार किसी योद्धा को परास्त कर चुका है आसानी से, वो 18वीं बार आपको लड़का रहेगा तो आपका ईगो है ना, आपका डिग्निटी है, कह रही यार मैं तो मार दूंगा उसको, लेकिन एक भक्त की पुकार जो है वो भगवान के लिए अधिक कीमती है। वो खुद के क्या कहते हैं उसको, प्रेस्टीज को, खुद के माननीय स्थिति को त्याग करके भगवान अपने प्रेम की पुकार को सुनते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा, रणछोड़दास, जो रण छोड़ के भागते हैं, अगर हम लोग रण छोड़ के भागेंगे ना तो हमारी निंदा होगी, लेकिन जब भगवान रण छोड़ के भागते हैं तो उनका विग्रह की पूजा होती है, उसका नाम है रणछोड़दास जी महाराज। और सबसे पहले रणछोड़दास जी का विग्रह ही द्वारका में था, जो मूल विग्रह है द्वारकाधीश के नाम का, वो रणछोड़दास जी थे। क्योंकि तो भगवान ने रण छोड़ा किसके लिए, डरपोक बनकर नहीं छोड़ा उन्होंने, अरे एक भक्त पुकार रहा है, एक भक्त का प्रेम, एक भक्त की पुकार भगवान के लिए ज्यादा कीमती है अपने इज्जत और अपने शोहरत से ज्यादा, इसलिए भगवान ने छोड़ दिया उसको। जरासंध को ऐसा एक गलत अनुभूति दिया कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, भगवान डर गए हैं, ऐसा एक गलत फहमी दे दिया उसको। लेकिन टाइम पे वो पहुंचे, जब ये खबर पड़ी तो उन्होंने तुरंत किसी से बात नहीं किया, तुरंत दारुक को अपने ड्राइवर को बुलाया, बोला तुरंत रथ जोड़ लो, उनको तुरंत निकलना है, क्योंकि सुबह होने तक इंतजार करेंगे तो पहुंचते पहुंचते मुहूर्त टल जाएगा, उधर का शादी वादी हो जाएगी उसकी, अब भी निकलना है, शाम के समय पे निकले। और ऐसे लिखा है कई हजारों किलोमीटर का अंतर उन्होंने एक रात में काटा ब्राह्मण के साथ। यहां पर बलराम जी को खबर मिली, अरे तो अकेले चले गए रात को, रुक्मिणी का खाता आया था, कोई ब्राह्मण आया था, समझ गए सब उनको कि अभी यहां पर कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि शिशुपाल तो दुश्मन है हमारा, उसके साथ विवाह होने वाला है और उसकी ही जो प्रियतमा पत्नी होने वाली है रुक्मिणी, उसी को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, मतलब गड़बड़ तो होगा जरूर होगा। तो बलराम जी सैन्य को बुलाते हैं और तुरंत उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। तो कृष्ण भी पहुंचते हैं, ब्राह्मण भी पहुंचता है और बलराम जी पहुंचते हैं सेना को लेकर, उनका यथा योग्य स्वागत करते हैं भीष्मक राजा, उनके लिए तम अच्छा घर बना के रखा है उनके लिए, और उनको विराजमान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, सेना को शांत करते हैं, अच्छी तरह से व्यवस्था करते हैं। इधर रुक्मिणी देख रही आए कि नहीं, आए कि नहीं, आए कि नहीं, आए कि नहीं, ब्राह्मण भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कृष्ण भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनको तो शी फील्स वेरी होपलेस। आप अगर रुक्मिणी के मनोस्थिति मनोअवस्था का अगर स्टडी करेंगे ना, शुरू से लेकर अंत तक भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना चिंतन उसने किया है और कितनी चिंताओं का सामना किया है, कितनी अस्थिरता अनिश्चिति का अनुभव किया उसने, आपको पता नहीं कि आप जीतेंगे हारेंगे, हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्या होगा, खाली एंग्जाइटी एंग्जाइटी है, अंधेरा है पूरा, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। वो प्रेम तो इतना है, प्रेम की भावना के साथ में ये चिंता जो है, ऐसा कहते हैं कि ऐसे प्रेम से की हुई चिंता जो है हृदय को पवित्र कर देती है। यशोदा माई भी आप कहेंगे इतनी बड़ी भक्त है, कॉन्स्टेंट चिंता में रहती थी वो, कहीं कृष्ण को कोई खा न जाए, कोई जानवर काट ना ले, कोई ये ना कहे, वो कहीं खेलते खेलते कुछ मट्टी ना खा ले तो पॉइजन ना हो जाए उसको, हाँ अरे एक दिन पुतना आई, थोड़ा मरता आया, क्या हो रहा है उसका, कॉन्स्टेंट चिंता में रहती थी वो। आप बोलेंगे ये डिवोटी की क्या है, ये डिवोटी को शांत रहना चाहिए, आनंद रहना चाहिए, ये तो कॉन्स्टेंट चिंता में रहते हैं, ये डिवोटी के कौन है ये। ऐसी चिंता को भक्तिपूर्ण चिंता कहते हैं। जो भक्ति में चिंता करते हैं वो चिंता उनको शुद्ध कर देती है, और जो स्वार्थ के लिए चिंता करते हैं वो चिता की ओर बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, शास्त्र में लिखा है। चिंता करनी चाहिए लेकिन भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए करनी चाहिए। एनीवेज, तो रुक्मिणी देवी का भावना ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। फाइनली वो ब्राह्मण आता है, आज शाम है कल विवाह है, वो शाम को पहुंच जाता है। इमेजिन, अभी दुल्हन के रूप में शिशुपाल के लिए दुल्हन के रूप में श्रृंगार किया जा रहा है उसका, सारे खरीदी हो चुके हैं, सारे वस्त्र आ चुके हैं, गहने आ चुके हैं, अलंकार आ चुके हैं, और उसके नाम से पहनाए जा रहे हैं उसको कि इसकी बहू बनना है आपको। वो दुखी हो रही है, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। तब ब्राह्मण आके अंतःपुर में प्रवेश करता है, सबको बाहर भेज देता है, बोला कृष्ण आ गए हैं, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मराठी में कहते हैं जीव भांड्यात पड़ला, आले बुआ एक दचे, एवढी चिंता के लिए इतके दिवस, कितने दिन मैंने देखा, इंतजार किया उसको, पता नहीं था आएंगे कि नहीं आएंगे, पुत्र पढ़कर मैं योग्य हूं कि नहीं हूं, क्या सोचेंगे पता नहीं, आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आ गए वो मेरे लिए, कितने दयालु भगवान है। हाँ, उनको तो पता नहीं था कि जरासंध का आक्रमण छोड़कर आए हैं, रणछोड़दास की पदवी लेकर आए हैं, पता नहीं था उनको, बाद में पता चला, लेकिन हमको पता है, हमने पढ़ा है शास्त्र में, एक भक्त के लिए रण से भागा हुआ ये निंदनीय पदवी स्वीकार किया उन्होंने, ऐसे हमारे भगवान है, बोलो कृष्ण भगवान की। फिर रुक्मिणी आश्वस्त हो गई, श्रृंगार किया उसने और निकली। ऐसा रिवाज था कि जो बुजुर्ग औरतें हैं जिनकी शादी शुदियाँ हो गई है, शादी रानियाँ हैं, कई देशों की रानियाँ हैं, वो चाचियाँ हैं, नानियाँ हैं, दादियाँ हैं, सब लोग सौभाग्यवती जो हैं ये नवपरिणीत जो बहू है उसको लेकर श्रृंगार करके अंबिका के मंदिर में जाते हैं। अभी इसमें दोबारा एक बार द्रौपदी के रुक्मिणी के सुंदरता का प्रमाण मिलता है। जब लोगों को जो आए हुए मेहमान आए हुए हैं उसमें बहुत सारे जवान लोग थे, राजपुत्र थे, राजा भी थे, शादीशुदा भी राजा थे, उनको पता चला कि अभी ये निकलेगी, समझो ये महल है उनका और ये दरवाज़ा है और यहाँ से जाएगी और ये मंदिर है, तो बहुत छोटा सा अंदर है, बहुत अंदर था उसके अंदर, ये मंदिर है अम्बा अम्बा देवी का, तो ये दरवाजे से लेकर दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाया गया था। राज करने जा रही भाई, शादीशुदा होने वाली कल से, बैरिकेडिंग लगाया गया था दोनों तरफ, जितने मेहमान आए थे सारे घोड़े लेकर खड़े हो गए लाइन लगाकर, आखिरी बार दर्शन होगा, कल तो वो शिशुपाल के हो जाएगी, आज का तो एक ही दिन है वो जो कन्या होगी उसका दर्शन कर सकते हैं, सब लोग लाइन लगा के खड़े हो गए। हाँ, भीड़ लग गई, धक्का मुक्की होने लगी और सब लोग घोड़ा बीड़ा अपना सब हाथी जो भी शास्त्र है लेकर खड़े हो गए, यहां से लेकर वहां तक मंदिर के पहली सीढ़ी तक जगह ही नहीं है, एकदम हाउसफुल है पूरा। और जब वो निकली बाहर अनेक सखियों के साथ, अनेक रानियों के साथ, अनेक बुजुर्ग औरतों के साथ जब निकली तो उसका सौंदर्य, एक तो सुंदर थी, ऊपर से 16 श्रृंगार की हुई थी, देखो आप, एक होती सुंदरता और जब उसका 16 श्रृंगार के साथ में प्रकट होती है तो क्या कहने उसके। एक एक करके सारे राजकुमार बेहोश हो गए उसको देखकर, अपने घोड़े से हाथी से रथ से नीचे गिर गए, इतने काम भावना से वश हो गए वो। और ये जा रही है, हाँ, एक गजगामिनी कहते हैं उसको, गजगामिनी यानी जिसकी चाल हाथी की तरह है लेकिन बहुत मंद मंद सुंदरता से चलती है वो, ऐसे गजगामिनी की तरह चलते चलते वो अंबिका के मंदिर पहुंचती है, कई राजकुमारों को अपनी सुंदरता के बाणों से घायल करते हुए चलती है वो। लेकिन मन में, उनके मन में कितनी एंग्जाइटी है, उनका ध्यान इस पर नहीं है कि ये गिर गया, देखो वो गिर गया, देखो मम्मी वो गिर गया, देखो चाची वो गिर गया, ये ध्यान नहीं उसका, उसका ध्यान केवल एक चीज पर है, कृष्ण कहाँ है। सब जगह देख रही हो, आपको लगेगा कि वो राजकुमारों को देख रही है, अरे कैसी लड़की है, शादी हो रही है राजकुमारों को देख रही है, नहीं, वो राजकुमारों के भीड़ में कृष्ण को ढूंढ रही है, कहाँ है कृष्ण, ब्राह्मण ने तो कहा था कि आ गए हैं, किधर है वो। मंदिर तक पहुंचती है फिर भी दिखाई नहीं पड़ती, तो लास्ट मोमेंट की एंग्जाइटी है, अभी आ तो गए हैं लेकिन कर क्या रहे हैं, क्या मन में है उसके, शादी अटेंड करने को आए हैं कि मुझे उठाने आए, क्या मालूम है, आमंत्रण दिया होगा पिताजी ने, शादी अटेंड करने आए होंगे, मन में विचार क्या क्या मालूम है उनको, कितनी एंग्जाइटी है उनके मन में। अंबिका के मंदिर में जाती है, ब्राह्मण लोग खाली पूजा सब करते हैं अंबिका की, एक समय आता है उस पूजा के अंदर अपने होने वाले पति का नाम लेकर एक मंत्र बोलना होता है, तो वो मंत्र उसको बोलने के लिए बताते हैं, तो ये देखो धाड़सी क्षत्रिय कन्या, अपनी माँ है उधर, अपनी दादी है, अपनी नानी है, अपनी चाची है, अपनी काकी है, मौसी है, सब लोग खड़े हैं उधर, बड़ी बड़ी बुजुर्ग आदरणीय औरतें खड़ी हैं जिनके सामने ऐसे गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, उन सबके सामने कृष्ण का नाम लेकर मंत्र बोलती है वो। सब लोग गुस्सा करते हैं, क्या बोल रही हो तुम, ये तुमको सिखाया था, डांटने लगती है। एकदम निश्चय पूर्वक स्त्री हृदय होकर अंबिका के सामने कृष्ण का नाम लेकर वो मंत्र बोलती है। सब लोग औरतें परेशान, लेकिन जनता में कैसे अभी अपना गुस्सा दिखाएं, हैं सब आम जनता खड़ी है तो शांत हो जाते हैं, अंदर ज्वालामुखी भड़क रही है कि क्या करने वाली लड़की हमारी, ऐसा करके वो टर्न लेती है और वो मंदिर से ऐसे उतर रही है। मंदिर की सीढ़ियां उतरी उस समय बाई और उन्हें कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण भगवान भी कैसे है ना, ज़्यादा सनसनीखेज पैदा नहीं करते हैं, सनसनी पैदा नहीं करते हैं, बोले चलने दो जो चल रहा है, जब समय आएगा तो अपना काम कर रहे हैं। तो उधर आते हैं जहाँ पर अपने डॉक्टर सम्राट बैठे हुए हैं, वहाँ पर रथ लेकर आते हैं, जैसे ही उतरती है इसे आराम से रथ से उतरते हैं, सबके सामने उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको लेकर रथ में चढ़ाते हैं, रथ घुमाते हैं और चलने लगते हैं एकदम आराम से। हाँ, लोगों को कुछ समय लगता है क्या हो रहा है वो समझने के लिए, टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड, जो एकदम नामुमकिन है, जो अनपेक्षित है वो हो रहा है, वो भी तो एकदम तैयार थी ना। आप खाली विचार कीजिए कि इतनी सारी चिंता के, एंग्जाइटी के बाद में जब वो दर्शन करती है तो उसको क्या लगा होगा। जीवन भर जिसके विषय में सुना, जीवन भर जिसका चिंतन किया, जीवन भर जिसको पूजा, जीवन भर जिसको हृदय अर्पण करके उसके बारे में सोचा, अभी अपना जीवन उसके चरणों में समर्पित करने का समय आया है और उसका दर्शन भी हुआ है, इतनी चिंता के बाद में कितनी आनंदित हो गई होगी वो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ऐसे ही आनंद आप सबको होगा जब आप भगवान के चरण में शरण हो गए और भगवान को प्राप्त करेंगे मृत्यु के बाद में। आप सबको भी वही अनुभव होगा जो रुक्मिणी ने भगवान को देखकर अनुभव किया। जय श्री राधे। द्वारका में बैठकर हम सबसे लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दिन हमारे जीवन भी आ जाए एक दिन, हाँ, जब ये शरीर छूट जाए, ये दुनिया छूट जाए, ये रिश्ते नाते छूट जाए, ये सब बाधाएं आसक्तियां छूट जाएं और हमारे प्रियतम हृदय के प्रियतम कृष्ण जो है वो हमारे सामने हमारे लिए प्रकट हो जाए। वो आम जनता के लिए अटेंड करने के लिए नहीं आए थे, उसके लिए वहां पर प्रकट हो गए थे वो। बड़े ऐसे कहते हैं, मुझे वो सुनकर बड़ा आनंद आता है जब मैं पढ़ता हूँ, बोलते हैं भेड़ियों के भीड़ से जब सिंह आकर अपने शिकार को लेकर चला जाता है ना, उसी भाव से भगवान वो जो कामना वश जितने राजकुमार वहां पर आए थे उनके बीच में से रुक्मिणी को बड़े क्या कहते हैं उसको शान से उठा कर ले जाते हैं। हाँ, तब तक तो क्या हुआ, बहुत लोग तो बेहोश पड़े ना इसको देखकर, ए उठो उठो देखो क्या हो रहा है, क्या पड़े हो, उठो देखो, ले गया उसको उठा के, जिसका हमको डर था, जिसको हमको चिंता थी, जो होने वाला था, हमारा मन में भय था, वही हो गया है। वो कृष्ण जो ग्वाला द्वारका से आकर इस रुक्मिणी को सुंदर स्त्री को ले गया है, तब तक वो सवार थे अपने आप को, हे उठो सब लोग, जरासंध दमघोष सब लोग आ जाओ, आक्रमण करो आक्रमण, सब लोग भगवान के पीछे सेना लेकर भागते हैं। भगवान आराम से, हाँ, वही एंग्जाइटी, ऐसा नहीं कि उसको लेकर भाग रहे हैं, एक किसी को देखने के पहले भाग जाओ यहां से, ऐसा नहीं है, पूरा आत्मविश्वास के साथ में आराम से जा रहे हैं। रुक्मिणी उनको देख रही है, वो रुक्मिणी को देख रहे हैं, रथ लेके जा रहे हैं, उतने में आवाज आती है, बहुत आवाज आती है, बहुत आवाजें आते हैं, सावधान सावधान सावधान, आराम से घूमते हैं, धनुष बाण निकालते हैं, बड़े आसानी से सबके रथों को टुकड़ा कर देते हैं। हाँ, उतने में बलराम जी वहां पर आते हैं, उनको पता है ना कि हमारा भाई जहां जाता है वहां पर गड़बड़ तो कर ही देता है, वो भी आते हैं और जोरदार युद्ध होता है वहां पर। ऐसे कहते हैं कि क्षत्रियों की शादियों में बिना खून बहाए युद्ध शादी होती नहीं है, थोड़ा तो खून बहना ही चाहिए, झगड़ा वगड़ा होना ही चाहिए, बड़ा घमासान युद्ध होता है। और सबके रथ को तोड़ देते हैं भगवान, सबके सारथियों को मार देते हैं, घोड़ों को मार देते हैं। ये देखकर जो होते ना नेता जरासंध जो है वो सब लोग बोलते भागो यहां से, हम तो अपना अपमान हुआ इसलिए आ रहे हैं, लेकिन शिशुपाल के लिए क्यों हम अपनी जान दे दें। यहां पर असली मित्रता का प्रदर्शन हो रहा है, पहले तो मित्र के रूप में आए थे, उसको बोल रहे थे डोंट वरी हम लोग आए हुए हैं, गड़बड़ हो गया तो हम लोग है ना, चिंता मत करना, सेना को लेकर ही आए हैं। लेकिन जब ऐन मौके पर जब लड़ने का समय आता है तो जरा संदेह सकते क्या सोचता है, शिशुपाल के लिए क्यों मरे हम, अपने अपने घर जाएंगे अच्छा है, उसको मरने दो अकेले को, मैं क्या मरूं। एक एक करके सब लोग अपने अपने युद्ध को छोड़कर भाग जाते हैं और फिर भगवान अबाउट टर्न लेके द्वारका की ओर जाते हैं। उतने समय तक घर में खबर पहुंचती है कि मेरी बहन को कृष्ण लेकर गया है, भाग कर ले गया है, चुरा कर ले गया है, अपहरण करके ले गया है। शिशुपाल इज वेरी डिस्टर्ब, आप सोच रहे ना मेकअप रूम में उसका मेकअप हो रहा है, हाँ, अच्छे अच्छे गहने पहन रहा है, मुकुट पहन रहा है, अलंकार पहन रहा है, राजवस्त्र पहन रहा है, दूल्हे का जोड़ा पहन रहा है, सब दोस्त उसकी हंसी मजाक करते हुए श्रृंगार कर रहे हैं। और आप सोचो आप दूल्हे बन रहे हो, हाँ, और आपको खबर मिलती है कि आपके दुल्हन को कोई चुरा के ले गया है कितना दुख की बात है, हाँ, जिसके लिए हम लोग सपने देखते आ रहे हैं कि वो रुक्मी की बहन भीष्मक की कन्या सौंदर्यवती जिसको लेकर देवता पागल होते हैं वो मेरी पत्नी होने वाली है, उसका भी वहां श्रृंगार हो रहा है, मेरा भी वहां श्रृंगार हो रहा है, ऐसा वो सोच रहा है, मन में लड्डू खा रहा है। और खबर आती है कि तुम्हारा लड्डू छोई चुरा ले गया है वो ऐसा उठता है, कृष्ण मेरा दुश्मन, अभी निकलता हूं उसको साथ में युद्ध करने के लिए। रुक्मी कहता है वो जिम्मेदारी मेरी है, मेरी बहन है वो, तू मेकअप चालू रखना मैं आता हूं, मतलब इस इज कॉल्ड एज फ्रेंडली काउंसलिंग, हाँ, हिम्मत देना है उसको, हिम्मत दे रहे हैं, आप चिंता मत करना, आपका मेकअप चालू रखना, मैं आपका मेकअप को भंग नहीं होने दूंगा, मैं जाऊंगा और मैं इन सब योद्धाओं के सामने ऐलान करता हूं कि आज मैं कृष्ण का शीश लेकर ही लौटूंगा विदर्भ नगरी में, और अगर मैं कृष्ण का शीश लेकर नहीं लौटा तो मैं दोबारा विदर्भ नगरी में मुंह दिखाने के लिए नहीं आऊंगा। तालियां सब लोग बजाइए, तालियां अरे उस मूर्ख को पता नहीं था कि उसको विदर्भ बकरी में आना नहीं वापस अभी इसके बाद में. ही वॉज नॉट नोइंग दैट. तो फिर थोड़ा सा शिशुपाल को हौसला बढ़ता है, जाता है रुक्मी अपने सैन्य को लेकर. तब तक सारे लोगों को मारकर रास्ता में सब हाथी घोड़े उसके सर उसके हाथ टूटे हुए हाथों के अंदर तलवार ऐसे कटे हुए हाथ कटे हुए सर मुकुट के साथ में हाँ ऐसे हाथी चिखल है चिखल पूरा हाँ क्या कहते हैं उसको मैल भरा हुआ रास्ते में उसमें से निकल जाते हैं. आधे रास्ते में जाकर कृष्ण को रोकते हैं, रुक जाओ सावधान मुझसे युद्ध किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते, आज तुम्हारी मौत निश्चित है. फिर तालियां सब लोग बजा रहे हैं. फिर भगवान अबाउट टू डन लेते हैं. अभी रुक्मिणी की देखो अवस्था क्या है, ऐसा नहीं कि उस भाई पर प्रेम नहीं है, लेकिन अभी क्या करें, दिल तो एक ही होता है ना, वो एक ही व्यक्ति को देना होता है. अभी क्या देख रही हो, भगवान टर्न हो गए, सावधान किया तो वो स्वीकार किया उसने चैलेंज को. फिर युद्ध शुरू हुआ तो भगवान ने ना ऐसा मतलब आसानी से लेकिन भयंकर युद्ध किया. सब देवता लोग आकाश में जमा हो गए और भगवान ने अपने बाणों से रुक्मी का धनुष तोड़ दिया, रुक्मी का रथ तोड़ दिया, रुक्मी के सारथी को मार डाला, रुक्मी का शिखर जो है रथ का जो होता ना क्या कहते हैं उसको वो पताका होती है ध्वजा होती है वो सब तोड़ दिया. तो रुक्मी जमीन पर गिर गया. तो फिर उसने गदा लिया, गदा को भगवान ने चकनाचूर कर दिया. उसने तलवार लिया, भगवान ने टुकड़े कर दिए. धनुष उठाया, उसके टुकड़े कर दिए. फिर तलवार उठाई, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हो कि जो भी उठाता हूँ टुकड़े हो जाते हैं उसके, मैं तो हमला कर ही नहीं पाता हूँ ऐसा सोच रहा है वो. फिर वो क्षत्रिय वेग से इतना त्रस्त हो जाता है और क्रुद्ध होकर जमीन से दौड़ रहे हो और भी तलवार लेकर भगवान को मारने की जरूरत है. भगवान अपने बाणों से आराम से तलवार के कई टुकड़े कर देते हैं. फिर वो भाग के आता है तो भगवान आराम से उतरते हैं और बाण ऐसे उस पर मारने के लिए तैयार है. तो रुक्मिणी भगवान को देख रही है, उसको देख रही है, भगवान को देख रही है, उसको देख रही है. मतलब क्या हो रहा है, अरे मेरे शादी के दिन मेरे मतलब जब मेरे मेरे दिल के स्वामी ने मुझे स्वीकार कर लिया उस आनंद के दिन में मेरे भाई का मृत्यु हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है. तो ऐसे दीन चेहरे से अपने पति को देख रही है. तो भगवान समझ जाते हैं कि भाई रुक्मिणी को इतना संकोच है, एक तो पति प्राप्त हो गए मेरे रूप में और एक सामने भाई का मृत्यु हो रही है, ये कैसे हो सकता है. उतने में बलराम जी वहां पर आते हैं. देख कन्हैया कैसा आदमी है तू, उस भाभी को जरा देख, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना जरा, उसका आज आपकी प्राप्ति हुई है उसको और तुम आज के दिन उसके भाई को मार रहे हो, तूने सोचा है उसको क्या लगेगा, थोड़ा सोचा कर कृष्णा सोचा कर. भागवत में ऐसा वर्णन है कि वो अपने भाभी पर थोड़ा सा इंप्रेशन मारने का कोशिश कर रहे हैं. नहीं नहीं भाभी ये थोड़ा बड़ा भाई हूँ मैं, कुछ ऐसा वचन बोलना चाहिए कि पहले से ही उसका इंप्रेशन बन जाए. तो भगवान बोलते हैं बात सही है, वैसे है तो मेरा साला ही ना वो, तो क्या किया जाए. तो डिस्कस करते हैं. तब तक ये ऐसे ऐसा नहीं कि उठकर भाग रहा है, वो भी क्षत्रिय है ना, नीचे पड़ा हुआ है बाण का नोक उसके ऊपर है और डिस्कस किया जा रहा है क्या किया जाए. आप सोचो रुक्मी के विषय में सोचो, आप नीचे गिरा हुआ है बेचारा सोच रहा है क्या होगा मेरा अभी. तो निर्णय होता है इसको जान बख्श दी जाए, मतलब इसको मारा नहीं जाए, लेकिन मारना भी तो है, दोनों करना चाहिए. तो क्या कहते हैं, क्षत्रिय को युद्ध में परास्त होने पर मृत्यु दिए बिना केवल अपमानित करके भेज देना, उससे मृत्यु से भी बढ़कर है वो. बोला ऐसी मृत्यु उसको देंगे. भगवान क्या करते हैं, बाण छोड़ देते हैं, तलवार निकालते हैं तलवार से उसके आधे बाल काट देते हैं, उसके आधी मूछ काट देते हैं, दाढ़ी आधी काट देते हैं, हाँ उसको विद्रूप कुद्रूप कर देते हैं और बाल के हेयर स्टाइल ऐसे बनाते हैं कि कुछ बाल यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, ऐसे जंगल में होता है ना गवत कैसे होता है बीच बीच में ऐसे उसके बालों को बना देते हैं और पूरा उसका मुकुट उड़ा देते हैं, हाँ उसको विद्रूप कर देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं. परास्त तो हो गया ना वो, ऐसे बाणों से उसको बांध देते हैं, बाद में ये सब करते हैं. तो बड़ा उसका अपमान होता है, उसकी प्रतिज्ञा आ जाती है उसको कि मैंने तो कहा था कि कृष्ण का सर लिए बिना मैं द्वारका अपने विदर्भ में प्रवेश नहीं करूंगा, अभी कहा किस मुंह कौन मुंह देखे कौन सा मुंह देखे जाएगा वो. तो वहीं पर वो भोजकट नाम की जगह थी जहां पर ये युद्ध हुआ था, वहीं पर वो जाके झोपड़ी में रहने लगता है और धीरे धीरे क्षत्रिय होने की वजह से एक राज्य बसा लेता है वहां पर. और शिशुपाल का मेकअप वहां पर अधूरा रह जाता है और वैसे ही दुखी होकर वो अपने घर चला जाता है. पता चलता है कि रुक्मी भी परास्त हो गया, कुछ नहीं कर सका, सब राजा भी चले गए, दोस्त लोग दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी तेरा ऐसा एतबार ना रहा, ऐसे गीत गाते हुए चला जाता है। क्योंकि जो भगवान की वस्तु है तो भगवान को मिलती है, वो भगवान के दुश्मन को नहीं मिल सकती है। और भगवान बड़े शान से बलराम जी के साथ द्वारका में प्रवेश करते हैं। यहां भीष्मक को खबर मिलती है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो बड़े बड़ा गुस्सा आता है उनको। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, वो मर्यादा वाले पुरुष है ना, वो किसी को वादा किया है पुत्री देंगे तो कोई आके उनको ले जाता है, मन की बात है उनकी पहले वाली, लेकिन फिर भी मर्यादा के खिलाफ है वो, तो मतलब गुस्सा करके आते हैं। तो बलराम जी उनको समझाते हैं कि जो ऐसा ऐसा है, शांत हो जाते हैं। फिर दहेज वहेज लेकर द्वारका पहुंचते हैं, और द्वारका में यहाँ पर एक माधवपुर नाम का गांव है, यहाँ से वो 17-18 किलोमीटर दूर है। उधर माधव राय जी का मंदिर है, वहाँ पर भगवान का और रुक्मिणी का विवाह होता है। बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, इस तरह से रुक्मिणी का विवाह संपन्न हो जाता है। तो ये जो कथा है, ये श्रवण करने से अनेक प्रकार के दिव्य इमोशंस का लाभ होता है, स्पिरिचुअल इमोशंस में एक्शन, इमोशन, नम्रता, वीरता, ढाढ़स, सब कुछ है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है इस कहानी में, एपिटोम, द बेस्ट सीन ऑफ द मूवी, वो क्या है, जब भगवान सिंह की तरह भेड़ियों के बीच में से अपने प्रियतमा रुक्मिणी को उठा कर ले जाते हैं। सबसे टॉप सीन है, इसको बार बार रिपीट करते हैं इस मूवी में। इस तरह से रुक्मिणी देवी जो है वो अपने इष्ट को प्राप्त कर लेती है, उसका विवाह होता है। लेकिन रुक्मिणी देवी का एक चरित्र ऐसा है कि रुक्मिणी देवी कभी भी स्वप्न में भी और किसी का विचार नहीं करती है। शिशुपाल का इसका विवाह तो होने ही वाला था ऑलमोस्ट, तय कर लेता मैं आत्महत्या कर लूंगी। और विवाह होने के बाद, यशस्वी होने के बाद में ऐसा नहीं कि मैं तो अयोग्य थी, अभी तो मैं योग्य हो गई हूँ, मैं द्वारकाधीश की पत्नी हो गई, मैं पहले तो खत लिखा था वो ठीक था उस समय का, ठीक था वो, अभी तो मैं द्वारकाधीश की पत्नी हो गई हूँ, अब मैं पटरानी हूँ, अब मैं जेठानी बन गई हूँ, जो पत्नियाँ आएंगी उसके बाद में आएंगी, मैं नंबर वन की पत्नी हूँ, ऐसा भाव उसके मन में कभी भी नहीं था। आप उसको भागवत में पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा, आगे जितनी बार उनका संपर्क होता है भगवान से, जितनी संवाद होता है, उस सब में वो एक ही कहती है कि मैं आपकी सेविका हूं, मैं आपकी सेवा करने के लिए इस घर में आई हूं, मैं हमेशा आपके चरणों के धूल बन के रहूंगी, मैं हमेशा आपकी सेवा की अभिलाषा करती रहूंगी, मैं तो आपके योग्य नहीं थी, आपने बड़ी कृपा से मुझे स्वीकार किया, आपने मेरे लिए बुरी पदवी लेकर भी मुझे त्याग करके, मतलब अच्छी पदवी को त्याग करके बुरी पदवी स्वीकार करके आपने मुझे स्वीकार किया है। इसकी वो जीवन भर ऋणी रही, कृतज्ञ रही। हम भक्तों को भी ऐसा ही कृतज्ञ होना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा करता है, जिसने भक्ति में लाया है, भगवान से परिचय कर दिया है, जिसने गुरु जी का परिचय कर दिया है, जिन गुरु जी ने दीक्षा दिया है, उन सबके प्रति हम हमेशा हमको कृतज्ञ रहना चाहिए। वी हैव टू बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु हैव हेल्प्ड अस, छोटी सी हेल्प की हो या बड़ी हेल्प की हो, उन सब की याद करना चाहिए। वो गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, जिसने सबसे पहली बार आपको भगवान के बारे में बताकर भगवान का नाम लेने के लिए उत्साह दिया था, प्रेरित किया था, कभी उसको भूलना नहीं चाहिए। और इस रास्ते पर जितने लोग मिलते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं भगवान की ओर बढ़ने के लिए, जो भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साह देते हैं, प्रेरणा देते हैं, दुखी समय में जब आप चिंतित होते रहो आपको हौसला देते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं और आगे भगवान के रास्ते पर चलने के लिए उत्साह देते हैं, उन सबको याद करना चाहिए हमेशा। क्योंकि जो कृतज्ञ होता है व्यक्ति, हु इज ग्रेटफुल, उसके लिए भगवान बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण होंगे, हम कपटी होंगे, चालाक होंगे, क्या क्या होंगे, पापी होंगे, लेकिन अगर हम भक्तों के प्रति कृतज्ञ हैं और हम नम्र हैं, भक्तों को सम्मान देते हैं, तो इन गुणों से भगवान बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। रुक्मिणी का चरित्र इन सारे दिव्य गुणों से भरा हुआ है। एक व्यक्ति है रुक्मिणी, इतने सारे भक्ति के अद्भुत गुण एक व्यक्ति में ठसाठस भरे हुए हैं, इसलिए रुक्मिणी को वंदन करना चाहिए। कृष्ण प्रिय नमस्तुभ्यम विदर्भाधीप नंदिनी, आगे क्या है, सर्व काम प्रदे देवी गृहाणार्घ्यम नमस्तुते। हमारा दंडवत स्वीकार करो, हमारा प्रणाम स्वीकार करो, हे सर्वगुणमयी देवी, हे सर्वगुण संपन्न देवी, हे दिव्य गुण संपन्न देवी, हे भगवान की प्रिय, हे कृष्ण प्रिय, आप हम पर कृपा करो, हमें भी उनके चरणों का सहारा दो, हम भी उनके चरणों के अभिलाषा से यहाँ पर आए हैं उनके चरणों की शरणागति प्राप्त करने के लिए, उनके चरणों की अभिलाषा आसक्ति प्रेम और भक्ति प्राप्त करने के लिए हम इतनी दूर आए हैं। इसलिए हे रुक्मिणी देवी, आप उनकी पत्नी हैं, ज्येष्ठ पत्नी हैं, आप पर वो प्रेम करते हैं, आपका कहना मानेंगे, आप कहेंगे तो ज़रूर ही आपका कहना मानेंगे और हम जैसे तुच्छों को भी स्वीकार करेंगे। बोलो रुक्मिणी महारानी की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैनेजर साहब, लंच रेडी है क्या? तो एक छोटी सी बात है सबको बताना चाहता हूँ, हम सब लोग यहाँ पर कौन से महीने में बैठे हुए हैं? हाँ, थैंक यू, दिसंबर नहीं बोला आपने, बहुत बड़ा धन्यवाद आपका। वैदिक बन के रहो, अंग्रेज बनकर मत रहो। आपका न्यू ईयर कभी है? चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, ये हमारा नया साल है। ओके, उस दिन में बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं हुई हैं, बता दूंगा आपको कुछ देर के बाद। भागवत गीता में भगवान ने बताया है कि मैं कौन सा महीना हूं, मासाणाम मार्गशीर्षो हम, सब महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। तो आप जिस महीने में यहां पर आए हो वो स्वयं श्री कृष्ण हैं और इस ऐसे पवित्र महीने में आप साक्षात श्री कृष्ण के धाम में आए हो। तो ये सब मासाणाम मार्गशीर्षो हम किसमें कहा है? हाँ, भगवत गीता में कहा है, अच्छी बात है। ये भगवत गीता कौन से महीने में कही गई थी? मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी के दिन, जो कल की एकादशी थी ना, उसके पहले वाले एकादशी में भगवान ने ये गीता कही थी। उस दिन महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, मतलब शुरू होने ही वाला था, तब कृष्ण और सारथी बनकर अर्जुन के रथ में बैठकर चल रहे थे। तब भगवान को अर्जुन ने कहा, सेनयोर उपयोर मध्य, दो सेना के बीच में मुझे ले जाओ, मुझे देखना है युद्ध की अभिलाषा से कौन कौन आए हुए हैं, लेट मी सी कि इस पक्ष में कौन है, इस पक्ष में कौन सी ईर्ष्या लेकर, कौन कौन सा पक्ष लेकर, कौन कौन लड़ रहा है, आई वॉन्ट टू सी, मुझे देखना है। तो ले गया तो देखाया, तो क्या देखा, इधर भी अपने उधर भी अपने, किससे लड़े, इधर भी गुरुजन उधर भी गुरुजन, इधर भी पूजनीय लोग इधर भी वंदनीय लोग, सब जगह पर आदरणीय लोग, बाण किस पर चलाए। और सबसे बड़ी बात दुख की है कि जिनके गोद में खेले हम लोग, जिनके हाथ से खाया, ऐसे भीष्म पिता भैया उधर खड़े, जिनके हाथ से हमने सीखा धनुष कैसे उठाना है, तलवार कैसे उठानी है, गदा कैसे उठानी है, रथ चलाना कैसे है, राज विद्या युद्ध विद्या जिनसे सीखा, वो द्रोण भी वहां खड़े, उनके साथ में कितने आदरणीय लोग हैं। अरे बाप रे, ये तो भयंकर युद्ध है, सब युद्ध कभी लड़ा नहीं हमने पहले, आज दोनों तरफ हमारे लोग हैं। अरे बाप रे, एकदम भ्रमित हो गए, एकदम कंफ्यूज हो गए, उधर ही बैठ के मटक के बैठ गए। जो धनुष लेकर उसका तनत्कार की आवाज सुनकर दुनिया डरती थी, गांडीव धनुष के चनत्कार सुनकर देवता लोग भी कांपते थे उसके ध्वनि से, इतनी गर्जना होती थी उसकी प्रत्यंचा की। वो अर्जुन के हाथ से कहते हैं वेपतुश्च रोम हर्ष, मतलब वो हाथ गर्म हो रहा है मेरा, कांप रहा है और जलने की वजह से मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, मेरे हाथ से धनुष फिसल रहा है और मैं भी बैठ रहा हूं रथ में, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय भगवान ने भगवद्गीता सुनाई, वो शास्त्र सुनाया, ऐसा उपदेश सुनाया कि बैठा हुआ आदमी फिर खड़ा हो गया, गिरा हुआ धनुष फिर उठाया, फिर बाण हाथ में लिया, फिर टणत्कार किया, फिर सब लोग कांप उठे, फिर शंख बजे और फिर महाभारत का युद्ध हुआ और पांडव लोग विजयी हो गए। अर्जुन दोबारा नहीं बोले, अब क्या करूं, इनको कैसे मारूं, उनको कैसे मारूं, जो बोला वो करते गए। जिसने शुरू में कहा कि मैं अभी भ्रमित हो गया हूं, हाँ शिष्यस्ते आदि माम ताम प्रपन्यम, मैं तो अभी पागल हो गया हूं, आप ही समझाओ, अभी दोस्ती वोस्ती बंद करो, अभी गुरु बनो मेरे, आप मैं शिष्य हूं आपका, और समझाओ मुझे क्या करना है, मैं दोस्ती का खाता बंद, मजाक बदाक बंद, गंभीर डिस्कशन करो अभी। और भगवान ने पूरा गीता सुनाया, एंड में क्या बोले, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। अब मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, मेरी खोई हुई याद वापस आ गई है, अब मैं आप जो कहूंगा वो करने को तैयार हूं। करिष्ये वचनम तव, ये गीता की जर्नी है। शुरू हुई मैं नहीं करूंगा, एंड हुआ मैं करूंगा, जो भी आप बोलूंगा वो करूंगा। बीच में क्या हुआ आइए देखिए, भगवत गीता खरीद के आइए सब लोग भगवत गीता को झांक कर देखे, ऐसा क्या चीज भगवान ने उसको बताया। इतना महान योद्धा ऑलरेडी हार चुका था युद्ध, उधर ही बैठकर वो खड़ा हो गया, दोबारा युद्ध जीत गया। क्या था क्या उसके अंदर, अरे सबको उत्सुकता होनी चाहिए, इसमें क्या लिखा था भगवान ने, क्या बताया भगवान ने 45 मिनट के अंदर, भगवान ने क्या चमत्कार किया उसके ऊपर। ये दुनिया की सबसे बड़ी साइकोथेरेपी है, बिगेस्ट साइकोथेरेपी मैनुअल इस भगवत गीता। और हम सब लोग ऐसे हार जाते हैं दुनिया में कई बार, यही वो गीता है जो हमको हिम्मत देती है, हौसला देती है और जीवन में प्रकाश दिखाती है और रास्ता दिखाती है। प्रामाणिकता से बताइए आप में से किसके किसके पास भगवत गीता नहीं है, सबके पास है? दूसरा प्रश्न डिफिकल्ट प्रश्न है, पहला भी डिफिकल्ट था, पता नहीं कितने लोगों ने अपनी डिग्निटी को याद करके हाथ ऊपर नहीं किया होगा, लेकिन आपको पता है कि आपके पास नहीं है। हाँ, उसका उत्तर यह है कि हमारी जो योगमाया देवी, हाथ दिखाओ जरा, हाँ योगमाया देवी अपने कंधे पर बहुत सारी भारी भारी गीताओं की किताब लेकर आई है, और भी बहुत लोग आए हैं मेरे ख्याल से, हाँ उनसे खरीद लीजिए अगर आपके पास नहीं है बिना संकोच। दूसरा कठिन प्रश्न, कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है? अरे बोल, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ना, क्योंकि ये जन्म जो है ये भगवत वाणी को नहीं समझेंगे तो जन्म लेके फायदा क्या है। कुत्ता बिल्ली का जन्म भी उससे अच्छा है जो अपना कर्तव्य वो अच्छी तरह से करते हैं। मनुष्य का जीवन भगवान की उपदेश वाणी को समझने के लिए दिया गया है, तो इस भगवत गीता को समझकर उतारने के लिए जिंदगी है हमारी। शंकर भगवान पार्वती को भगवत गीता का महात्म्य बता रहे हैं, वो गीता महात्म्य के रूप में उपलब्ध है, अलग किताब है उसकी, कि ये गीता क्या चीज है। उसमें वो कहते हैं कि भगवद गीता के 700 श्लोक में से एक श्लोक का चौथा हिस्सा, 1/4 अगर आप समझते हो और जीवन में उतारते हो, सीधे भगवत धाम में अपने आप को प्राप्त करोगे आप। यू विल फाइंड योर सेल्फ इन द किंगडम ऑफ गॉड जस्ट बाय फॉलोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग 1/4 ऑफ वन ऑफ द 700 श्लोकस। तो आप 1/4 श्लोक समझना नहीं चाहेंगे क्या? इतना कंजूसी तो करने के लिए, मतलब ऐसा कंजूस कोई होगा तो उसका तो पूजा करना चाहिए, आरती उतारना चाहिए, इतना महान कंजूस और कोई हो सकता नहीं है। कितना सस्ता भगवान ने अपने दुनिया में, अपने राज्य में एंट्री दे के रखा है, और फिर भी हमको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, उसमें उत्साह नहीं है। तो ऐसे कई भक्त हैं जो 700 श्लोक पूरी तरह याद है उनको, और मूर्तिमान भगवद गीता को फॉलो करने वाले। तो हमारी यात्रा में ये भी प्रेरणा लेकर जाना आप, कि अगर मार्गशीर्ष के महीने में जिसमें भगवद गीता बताई गई है उसमें अगर भगवान के धाम में आए हो और उन्होंने क्या आपको कहना चाहा था वो समझने का आपने प्रयास ही नहीं किया अब तक, तो क्या बोलेंगे, अरे इतना दिन पहले बता के रखा है, वो पढ़ते नहीं हो, बार बार आके बोलते हो कृपा करो कृपा करो कृपा करो, मैंने 5200 वर्ष पहले कृपा करके रखी हुई आपके ऊपर, वो कब लोगे आप? अरे यहाँ पर आके बार बार मांगते हो कृपा करो कृपा करो, जो पहले की हुई उसको पहले लो, फिर आ जाओ दोबारा, फिर समझेगा कि मेरी कृपा क्या है, वो भगवद गीता है। अर्जुन एक बछड़ा है, गाय जो है वेद रूपी गाय है, उसका दूध जो है वो भगवद गीता है जो अर्जुन को भगवान पिला रहे हैं। और गाय कभी भी बछड़े से जरूरी ज़्यादा, मतलब जितना जरूरी बछड़े को है उससे कई ज़्यादा दूध देती है, देते कि नहीं थी? हाँ, बछड़े को पेट भरने के बाद भी तुम्हारे हमारे के लिए भी दूध उपलब्ध होता है उसके पास। तो ये गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन का तो बहाना है, बताया हम सबको है उन्होंने। तो ये भगवद गीता को जरूर लीजिए, और ले लिया है तो जरूर उसको पढ़िए, और पढ़ ली है तो जरूर उसको इस जीवन में उतारिए अपने व्यवहार में, क्योंकि भगवद गीता का व्यवहार में उतारने से भगवान की प्राप्ति होती है। इतनी महान ग्रंथ है ये, एक ही ऐसा ग्रंथ है। सब धर्म में हिंदू धर्म का विरोध करने वाले लोग हैं, लेकिन सब धर्म के हिंदू विरोधी लोग भी भगवद गीता को प्रमाण मानते हैं, उसमें कोई दुमत नहीं उनका कि ये आध्यात्मिक शास्त्र है, ये इटर्नल गाइडलाइंस है भगवान का, ये परम शास्त्र है, इसमें कोई संदेह किसी के मन में नहीं है। और सब धर्मों के लोगों ने इस पर PhD किया हुआ है रिसर्च करके, लेकिन भगवद गीता का रहस्य केवल वही जानता है जो भगवान का भक्त है। भक्ति चेमी सखा चेती रहस्य एदम उत्तमम, इसका जो रहस्य बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, केवल भक्त को समझ में आएगी। हे अर्जुन तुझे समझ में आएगी, क्योंकि तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, तुम्हारा भक्त है। तो हम अगर भगवान के सखा मित्र और सुहृद बन जाते हैं तो भगवान का ये रहस्य आपके भी समझ में आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक विनती आपको है कि जहाँ हम दर्शन करने के जाएंगे वहाँ पर भी बहुत लोग आते रहते हैं, तो अगर आपके पास गीताएं हैं तो उनको वहाँ वितरित किया करो, देओ उनको, हाँ उनको वितरित करो और बताओ इसका महत्व क्या है। प्रभुपाद जी ने दिसंबर महीने में, मार्गशीर्ष महीने में ये गीता यज्ञ आरंभ किया था ताकि दुनिया भर के लोगों को भगवद गीता का परिचय हो, वो प्राप्त हो उनको, उनका जीवन का उद्धार हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट।